एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सत्य नडेला की किताब हिट रिफ्रेश के। नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, तो ये किताब उनके अनुभवों, माइक्रोसॉफ्ट में जो उन्होंने बड़े बदलाव किए, और हाँ, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर उनके विचारों का कह सकते हैं एक संगम है।
और देखिए, ये आज के समय में इतनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बदलाव तो हर जगह हो रहा है ना? टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, हमारे काम करने के तरीके।
सही बात है।
तो ऐसे में ये समझना कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी, जो एक टाइम पर थोड़ी पिछड़ती सी लग रही थी, उसने कैसे खुद को रिफ्रेश किया, कैसे वो दोबारा टेक लीडर बनी, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। मुझे लगता है हम सब अपने जिंदगी में, अपने काम में कभी ना कभी वो ठहराव महसूस करते हैं। तो ये किताब एक तरह से पूछती है कि हम भी वो रिफ्रेश बटन दबा सकते हैं।
हाँ, तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा सा जान लेते हैं। सत्य नडेला, नाम तो हम सबने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। पर कहानी शुरू होती है हैदराबाद से।
अच्छा।
हाँ, 1992 में वो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े थे, और कमाल की बात यह है कि वो कंपनी के अंदर से ही ऊपर उठे, मतलब बाहर से लाए गए सीईओ नहीं थे। 2014 में वो सीईओ बने।
हाँ, और उनकी बैकग्राउंड भी काफी मजबूत है। इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, फिर एमबीए भी है, तो टेक और बिजनेस दोनों की समझ रखते हैं। पर मुझे लगता है सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कमान तब संभाली जब माइक्रोसॉफ्ट को लेकर कई सवाल थे। लोग कह रहे थे कि इसका टाइम चला गया।
बिल्कुल, और उन्होंने क्लाउड और एंटरप्राइज डिवीजन को लीड किया था पहले, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट के कमबैक के लिए बहुत अहम साबित हुआ। लेकिन देखिए, जो बात इस किताब को और नडेला की लीडरशिप को बहुत मानवीय बनाती है, वो उनके बेटे ज़ेन का जन्म है। उन्हें सेरेब्रल पैल्सी है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में।
और नडेला खुद मानते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें बदल कर रख दिया। यहीं से उन्होंने सहानुभूति, मतलब एम्पथी, का असली मतलब सीखा, दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। और ये चीज, ये सहानुभूति उनकी लीडरशिप का कह सकते हैं कि मूल मंत्र बन गई।
ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एक निजी अनुभव एक ग्लोबल कंपनी के लीडर की सोच को इतनी गहराई से बदल सकता है।
हाँ, तो ये सिर्फ एक सीईओ की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, सहानुभूति और लीडरशिप के संगम की कहानी है।
तो ये किताब हिट रिफ्रेश असल में है क्या? नाम से तो लगता है कंप्यूटर वाला रिफ्रेश बटन।
हाँ, कुछ वैसा ही। ये एक तरह का आह्वान है कि रुको, सोचो और नए सिरे से शुरुआत करो। इसे आप एक तरह का लीडरशिप मैनुअल समझ सकते हो, खासकर आज के डिजिटल जमाने के लिए। किताब के ना मोटे तौर पे तीन हिस्से हैं।
अच्छा, क्या है वो?
पहला हिस्सा तो नडेला की अपनी कहानी है, उनका अपना रिफ्रेश। कैसे वो खुद कहते हैं कि वो एक सब कुछ जानने वाले, मतलब नो इट ऑल इंजीनियर से एक सब कुछ सीखने वाले, मतलब लर्न इट ऑल लीडर बने।
दिलचस्प है।
और इसमें उनके बेटे का अनुभव, वो सहानुभूति वाली बात, वो बहुत अहम है। ये उनका व्यक्तिगत बदलाव है।
ठीक है, और दूसरा हिस्सा?
दूसरा हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट का बदलाव, कंपनी का रिफ्रेश। ये वो कहानी है जो हम शायद बाहर से ज्यादा जानते हैं। कैसे कंपनी ने अपनी अंदरूनी लड़ाई वाली संस्कृति, वो साइलो कल्चर जहां डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं करते थे, उसे बदला।
हाँ, वो कंपटीशन वाला माहौल।
बिल्कुल, कैसे उन्होंने सिर्फ विंडोज पर टिके रहने की सोच छोड़ी और क्लाउड कंप्यूटिंग, सहयोग और यहाँ तक के पुराने दुश्मनों से पार्टनरशिप को अपनाया।
हाँ, वो एप्पल और लिनक्स के साथ काम करना, वो तो बड़ी बात थी उस समय।
बड़ी। और तीसरा हिस्सा, वो भविष्य की तरफ देखता है। एआई, मिक्स्ड रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये टेक्नोलॉजी हमारे समाज को कैसे बदलेंगी।
अच्छा।
और यहाँ नडेला सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, वो नैतिकता और जिम्मेदारी पर बहुत जोर देते हैं। एआई को वो इंसानों की मदद करने वाले टूल की तरह देखते हैं, उनकी जगह लेने वाले की तरह नहीं।
तो संक्षेप में ये किताब कह रही है कि ठहराव का इलाज है सहानुभूति, लगातार सीखना और एक मकसद रखना।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। पहले हिस्से में नडेला का जो सफर है, हैदराबाद में क्रिकेट खेलना, फिर अमेरिका आना, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना, काफी ईमानदारी से लिखा है उन्होंने।
हाँ, वो बताते हैं कि शुरू में उन्हें लगता था कि बस स्मार्ट होना ही काफी है।
एग्जैक्टली, और फिर उनके बेटे ज़ेन का जन्म, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहां से वो सोचने लगे कि टेक्नोलॉजी का असली मकसद क्या है, सिर्फ तेज मशीनें बनाना या लोगों की जिंदगी आसान बनाना। और यहीं से वो सहानुभूति का बीज पड़ा जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति बदलने में इतना काम आया। उन्होंने सीखा कि लीडर का काम है टीम को ताकत देना, ना कि खुद सबसे होशियार दिखना।
फिर आता है दूसरा भाग, 2014 में उनका सीईओ बनना। और जैसा आपने कहा, माइक्रोसॉफ्ट उस समय थोड़ी मुश्किल में थी, मोबाइल में पीछे, अंदर कंपटीशन ज्यादा।
हाँ बिल्कुल।
तो यहाँ वो नो इट ऑल से लर्न इट ऑल वाला फंडा कैसे काम आया? संस्कृति बदलना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक इतनी बड़ी कंपनी में ही होता कैसे है? मुमकिन है क्या?
देखिए, यही सबसे बड़ा चैलेंज था और नडेला मानते हैं कि ये आसान नहीं था। उन्होंने लीडरशिप टीम बदली, विविधता, समावेशन मतलब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर जोर दिया, मीटिंग्स का तरीका बदला ताकि लोग खुलकर बोल सकें, साइलो टूटे।
अच्छा।
और सबसे बड़ा कदम, जैसा हमने पहले कहा, वो सहयोग वाला, पुराने कॉम्पिटिटर्स के साथ पार्टनरशिप, ऑफिस को आईपैड पर लाना। ये उस समय माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये दिखाता था कि अब कस्टमर पहले है कंपनी की अंदरूनी सोच।
हाँ, और फिर वो क्लाउड फर्स्ट मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी, विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट की जान थी उसे थोड़ा पीछे रखकर एज्योर जैसी क्लाउड सर्विस पर फोकस करना, ये एक बड़ा जुआ था कह सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन वही काम कर गया। एज्योर आज देखिए कहाँ है, और लिंक्डइन को खरीदना भी इसी रणनीति का हिस्सा था, प्रोफेशनल नेटवर्क और क्लाउड को जोड़ना।
ठीक है, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भविष्य की टेक्नोलॉजी, AI, MR, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसको लेकर नडेला का क्या नजरिया है? क्या वो डराते हैं या उम्मीद जगाते हैं?
नहीं, वो डराते नहीं हैं, उनका नजरिया काफी बैलेंस्ड है। AI को लेकर वो कहते हैं कि ये हमारी मदद कर सकता है, हमारी क्षमताएं बढ़ा सकता है, जैसे डॉक्टर की मदद, साइंटिस्ट की मदद,
मतलब ह्यूमन एम्प्लीफिकेशन।
एग्जैक्टली। लेकिन वो खतरों के प्रति भी आगाह करते हैं, और इसीलिए वो माइक्रोसॉफ्ट के AI एथिक्स प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा, गोपनीयता, समावेशिता, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये बहुत जरूरी है।
और मिक्स्ड रियलिटी, हॉलोलेंस वगैरह।
हाँ, उसके उदाहरण देते हैं कि कैसे सर्जरी में, फैक्ट्री में मदद मिल सकती है। ये सिर्फ गेमिंग नहीं है, क्वांटम कंप्यूटिंग को वो भविष्य की बड़ी समस्याओं के हल के तौर पर देखते हैं, जैसे दवा खोजना। पर यहाँ भी नैतिक जिम्मेदारी पर जोर है। और आखिर में वो एक बहुत जरूरी बात करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी। तकनीक से जो असमानता बढ़ सकती है, नौकरियों पर जो असर पड़ सकता है, डिजिटल डिवाइड, इन सब पर कंपनियों को सोचना होगा। वो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं।
मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, समाज के प्रति जवाबदेही भी।
जी।
तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य संदेश निकल कर आ रहे हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। पहला तो मुझे लगता है वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात है, विकास की मानसिकता।
हाँ, ये शायद सबसे अहम है, ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा बदलाव इसी सोच पर आधारित था।
और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, हम कितनी बार सोचते हैं, अरे ये तो मेरे बस का नहीं, ये किताब कहती है, कोशिश तो करो, सीखो।
बिल्कुल। दूसरा है एम्पथी ड्रिवन टेक्नोलॉजी, सहानुभूति आधारित तकनीक। टेक्नोलॉजी सबके लिए हो, सिर्फ मेजॉरिटी के लिए नहीं, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए।
हाँ, भारत में सोचिए कितनी सरकारी वेबसाइट्स या ऐप्स हैं जो शायद उतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है उन लोगों के लिए जो टेक सेवी नहीं है।
सही कहा, सहानुभूति यहीं से शुरू होती है। तीसरा है पार्टनरशिप ओवर कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा साझेदारी। आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट का अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ काम करना दिखाता है कि मिलकर बाजार बड़ा किया जा सकता है।
ये हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, छोटे कारोबारियों में, मोहल्लों में। चौथा, AI एज ह्यूमन एम्प्लीफिकेशन।
हाँ, AI को एक सहायक के तौर पर देखना, ये हमारी मदद कैसे कर सकता है, क्या ये हमें बोरिंग कामों से मुक्ति दिला सकता है
ताकि हम ज्यादा क्रिएटिव हो सके।
बिल्कुल। और पांचवा है पर्पसफुल लीडरशिप, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व। कंपनियों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समाज पर उनका क्या असर हो रहा है ये भी देखना होगा।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कार्बन नेगेटिव होने का लक्ष्य या नैतिक AI पर जोर देना।
ये आजकल ग्राहक भी देखने लगे हैं, है ना, कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा बना रही है या कुछ अच्छा भी कर रही है।
हाँ, और किताब में कुछ लाइनें हैं जो इन बातों को बहुत अच्छे से कहती हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद आई, CEO में C का मतलब कल्चर, संस्कृति है।
वाह, ये तो कमाल की बात है।
मतलब लीडर का पहला काम है सही माहौल बनाना, संस्कृति सही होगी तो बिजनेस अपने आप चलेगा।
बिल्कुल, रणनीति बिना संस्कृति के अधूरी है, और ये वाली, सब कुछ जानने वाले से सब कुछ सीखने वाले बनने का बदलाव।
ये तो आज के लिए गुरु मंत्र है। इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं कि सीखते रहना ही एकमात्र रास्ता है।
विनम्रता और जिज्ञासा,
हाँ।
और ये लाइन, सहानुभूति आपको एक बेहतर इनोवेटर बनाती है,
है ना? ये उस मिथक को तोड़ती है कि इनोवेशन सिर्फ दिमाग का खेल है। जब आप लोगों की जरूरतें समझते हैं तभी आप उनके लिए कुछ बना पाते हैं। तो सहानुभूति सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं, एक बिजनेस टूल भी है।
और आखिर में टेक इंडस्ट्री की सच्चाई, हमारी इंडस्ट्री परंपरा का सम्मान नहीं करती, ये केवल इनोवेशन नवाचार का सम्मान करती है।
मतलब आराम से बैठने का तो सवाल ही नहीं, लगातार बदलते रहना होगा। तो सवाल उठता है कि इन सब अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है?
देखिए, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है नई चीजें ट्राई करना, कोई स्किल सीखना, कोई कोर्स करना, या बस अपनी किसी सोच पर सवाल उठाना, गलतियों से सीखना, डरना नहीं।
और सहानुभूति, वो कैसे प्रैक्टिस करें?
बस थोड़ा रुक कर दूसरों को सुनना, उनकी बात समझने की कोशिश करना, भले ही हम सहमत न हो, ऑफिस में, घर में, हर जगह। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं।
और अगर कोई लीडर है, मैनेजर है,
अपनी टीम में वो सुरक्षित माहौल बनाना जरूरी है, जहां लोग बोल सकें, सवाल पूछ सकें, डरे नहीं। इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। और टीम को काम का क्यों समझाना, सिर्फ क्या नहीं।
संगठनों के लिए क्या सबक है?
वो अंदरूनी दीवारें तोड़ना, सहयोग बढ़ाना और अपने मकसद को साफ रखना। हम यहाँ क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
और जो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं उनके लिए?
उनके लिए संदेश है कि नैतिकता और समावेशिता को डिजाइन के शुरू से ही सोचें। क्या ये सबके लिए है, इसके गलत नतीजे तो नहीं होंगे। मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही है कि सहानुभूति, जिसे अक्सर हम सॉफ्ट स्किल मानते हैं, वो असल में कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। नडेला का व्यक्तिगत अनुभव और फिर उसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में लागू करना, ये दिखाता है कि मानवीय मूल्य और बिजनेस सक्सेस साथ चल सकते हैं।
हाँ, और मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी चुनौतियों से सीखकर एक पूरी कंपनी की सोच बदल सकता है। ये उम्मीद जगाता है। लीडरशिप सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि विजन और कनेक्शन है। हिट रिफ्रेश सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, हम सबके लिए जरूरी है।
तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ शायद माइक्रोसॉफ्ट जितने संसाधन ना हों, हम सब व्यक्ति हों या छोटे संगठन, हिट रिफ्रेश के इन सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं? हमारे लिए ग्रोथ माइंडसेट, सहानुभूति, साझेदारी के क्या मायने होंगे, सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।